जादू का मौजू जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में लोगों के जहनों में बहुत सारे शुभात भी होते हैं। तो इन आयात को पढ़ने के बाद अगर हम ओवरऑल जादू के टॉपिक को चंद लफ्ज़ों में पेश करना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि किसी इंसान को इस चीज़ की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अपने आप को इस चीज़ में उलझाए। सबसे पहले अपने लिए ये सोचें कि मेरे पे जादू नहीं हो सकता, और जितना आपका ईमान अकीदा पुख्ता होगा, ईमान मजबूत होगा, इंशाअल्लाह ताला उतना ही आप ऐसे असरात से महफूज रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग इन चीज़ों को करते कराते हैं, बस लोग एक हुज्जत देते हैं, और वो क्या है कि हम तो अपने इलाज के लिए गए। मेरा ख्याल ऐसा तो कोई भी शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि मैं इसलिए जादू सीख रहा हूँ कि मैं दूसरों पे करूँ। हाँ, लेकिन ये बात कहने वाले कि जी हम पे किसी ने किया हुआ है और हम उसके इलाज के लिए, जिसको अपनी ज़ुबान में लोग तोड़ कहते हैं, कि हम उसके तोड़ के लिए जाते हैं, तो क्या इस बारे में इंसान का अमल होना चाहिए? देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक बेहतरीन रहनुमा बनाकर भेजा। इसके लिए फिर कोई बंदा अगर आपकी रहनुमाई से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो देख ले कि कोई भी काम होता था तो आप उसको कैसे करते थे। ठीक है, अल्लाह के नबी पे जब जादू नहीं हुआ हुआ था तो उससे पहले कुछ ऐसे औराद और कुछ ऐसे वज़ाइफ मिलते हैं कि जिसके ज़रिए से आप किसी की ऐसी चीज़ के जवाब में उसका दम करते थे। लेकिन रिवायात में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फलक और सूरत नास नाजिल हो गई, उसके बाद फिर आप कोई भी ऐसा मसला होता था किसी का तो यही दो सूरतें पढ़ने की दावत देते थे। तो दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये कि अभी जादू नहीं हुआ या आप इससे महफूज हैं, तो आप क्या सोचें, कैसे इससे बचें, इससे बचने के तरीके क्या हैं? और दूसरा तरीका ये है कि हो गया तो इलाज कैसे करें। पहली सूरत में तो पहली चीज़ वही बात है कि अकीदे को पुख्ता रखें, फिर दूसरी बात है तहारत का अहतमाम करें। गंदगी की हालत में ऐसी चीज़ों का असर बहुत जल्दी होता है। फिर एक और चीज़ जिसके रास्ते इंसान के जिस्म में ऐसी चीज़ें जाती हैं वो उसके बढ़े हुए नाखून हैं। ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि जिन्नात और शयातीन इंसान के नाखूनों के रास्ते से भी जिस्म में जाते हैं, तो आप अपने नाखून एक ख़ास वक्त के बाद काटें। अल्लाह के नबी ने अगर 40 दिन की बात की है तो उसमें हिकमत है। ये कोई खेल नहीं है कि भाई कह दिया जो दिल चाहा। हर चीज़ के पीछे कोई हिकमत होती है। इसी तरह फिर अगली चीज़ होती है वो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, यानी इंसान के जिस्म पर कुछ ऐसे बाल होते हैं जो नापसंदीदा होते हैं, उनके लिए भी यही हुक्म है कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। उसके रास्ते से भी ये गंदी चीज़ें जाती हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग जब किसी को के ऊपर जादू करना या कराना होता है तो वो उसका कुर्ता मंगवाते हैं, उसका कपड़ा मंगाते हैं। वो क्यों होता है कि उस कपड़े में उसका पसीना जज्ब होता है और उसके नाते से फिर वो कुछ काम ऐसा करते हैं। कोई भी शख्स अगर ऐसा कोई अमल या ऐसा इलाज पूछे तो इसे अवॉइड करना चाहिए। बाज़ लोग माँ का नाम पूछते हैं, वो क्यों? कि वो भी जिन्नों के सामने कुछ इस किस्म की कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर फिर उनके यानी बाज़ दफ़ा बुरे तरीके से उसका यानी इलाज किया जाता है, गैर शरई तरीक़ेकार हो सकता है। फिर इसके बाद ये कि शदीद रवैयों से बचना चाहिए। शदीद रवैये क्या होते हैं? बहुत खुशी, बहुत गम, खुशी इतनी हुई कि बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, गम इतना हुआ कि डिप्रेशन में चले गए। फिर इसी तरह आप देखिए गुस्सा, आप देखते हैं कि गुस्से में इंसान अपने कपड़े भी फाड़ने लगता है, बर्तन भी तोड़ने लगता है। तो ये जो इंतहाई रवैये होते हैं ना, इन मौाक़े पे शैतान को बहुत मौका मिल जाता है इंसान के जिस्म में दाखिल होने का। ख्वाहिशात से बचना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम को जो इब्लीस ने बहकाया था वो ख्वाहिश के रास्ते से बहकाया था कि तुम लंबी उम्र पाओगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। फिर इसी तरह एक और चीज़ ये होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचे ना, उसकी मसरूफियात ऐसी होनी चाहिए कि उसका जहन मसरूफ़ रहे। एक हमारे यहाँ मारूफ बात है कि खाली जहन शैतान की अमाजगा होती है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता ना, वो अक्सर फिर ऐसी बातें सोचते हैं, फिर शैतान वाकई उनको वैसी बातें सुझाने लगता है। तो अपने आप को बामकसद करें। आपके पास इतना वक्त ही नहीं, आपके जिसने किया है हुआ है कोई ऐसा असर, फिर हो मेरे पास तो वक्त ही नहीं है इसको सोचने का। जूँ ही आप ऐसा करेंगे ना, आप नहीं छोड़ सोचेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे असरात नहीं दिखेंगे। बाज़ दफ़ा कुछ घराने ऐसे होते हैं वहाँ उनको कुछ बुज़ुर्ग दिखते हैं, कोई कहता है मुझे बाबे दिखते हैं, कोई कहता है मुझे बोने दिखते हैं, छोटे छोटे कद के लोग दिखते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि जब उन्हीं ख्वातीन को कोई मसरूफियत दी गई कुरान पाक के पास आई, वो कहती हैं अब हमारे पास कभी ऐसे नहीं आए। उसकी वजह क्या है कि पहले खाली थे, शैतान का असर था, नावल, अफसाने, फिक्शन, ऐसी चीज़ों को देखना, फिर ऐसी वल्गर चीज़ों को सोचना, ये शैतान को खुश करता है। इसके बरक्स एक और चीज़ जो फ़ायदा देती है वो कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ है। आप देखेंगे कि जितना आपका कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा उतना ही ये चीज़ आपसे इंशाअल्लाह ताला दूर होती जाएगी। समझ के पढ़ें, शऊर के साथ पढ़ें। बस दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि हमने अपना इलाज खुद करना है, और उसका तरीका कुरान पाक बेहतरीन इलाज है। किसी भी वक्त खुदा न खास्ता अगर आपको अपने अंदर कोई ऐसी कसलमंदी महसूस हो, सुस्ती है, आजजी आती है, तो आप दिल पे जबर करके बावजू करें, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें। थोड़ी सी ऊंची बात से पढ़ें। सूरत बकरा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जादूगर इसकी ताब नहीं लाते। सूरत बकरा की इब्तदाई आयतें कह लें या उसकी आखिरी आयतें, पूरी भी अगर आपको शक है तो आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ें, जैसे शुरू कर लें, फिर जब ख़त्म हो जाए तो फिर नए सिरे से शुरू कर लें। ये भी चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगी। फिर इसी तरह ये कि वहम ना करें। वहमी शख्स के ऊपर जादू का असर बहुत जल्दी होता है, वो हर एक पे वहम करेगा। बाज़ दफ़ा मशहूर बात है कि लोग जब घड़े में पानी हिलता था तो उससे भी शक करते थे बाज़ बुज़ुर्ग, के पानी में किसी ने कोई तावीज़ डाल दिया या हम पे कोई जादू किया है। तो वहम ना करें। फिर अगली चीज़ है खौफ ज़दा ना हो। खौफ की एक ऐसी हालत है कि शयातीन जो होते हैं ऐसे, वो इंसान के अंदर खौफ की हालत में आते हैं। जैसे कोई डर जाता है ना, फिर वो अक्सर डर जाता है। बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, ये बच्ची डर गई हुई है, अब बहुत रोती है। वो क्यों? कि वो कोई एक कमज़ोर लम्हा ऐसा होता है कि जिसमें इंसान का नफ्स कमज़ोर होता है, तो फौरन ऐसे वक्त में शैतान उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर फिर असर डालने लगता है। फिर इसी तरह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दम बताया जिसको जिब्राइल अलैहि सलाम का दम कहा जाता है। वो भी आप अपने जो नवासे थे आपके, उनके ऊपर पढ़ा करते थे। उसके लफ्ज़ मैं बोल देती हूँ, अगर किसी को यानी समझ आ जाए या याद रख सकें तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको दमे जिब्राइल या जिब्राइल अलैहि सलाम का दम कहते हैं। बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाही अरकीका। तर्जमा है इसका, मैं अल्लाह के नाम से तुझ पर दम करता हूँ, हर उस चीज़ से जो तुझको तकलीफ़ दे, हर नफ्स के शर से या हसद करने वाली नज़रे बद से, अल्लाह ताला तुझको शिफा दे। अल्लाह के नाम के साथ मैं तुझ पर दम करता हूँ। तो ये जायज़ है पढ़ना, अगर कोई पढ़े, और ये दुआओं की किताबों में होता है, हिस्नुल मुस्लिम में भी आपको मिल सकता है। लेकिन अभी जो लफ्ज़ मैंने आपके सामने पढ़े, ये सही मुस्लिम के हैं गालिबन। इसका मैं चेक करके बता देती हूँ आपको। हज़रत अबू सईद रावी हैं इस हदीस के, और जी सही मुस्लिम की भी रिवायत है और तिर्मिज़ी में भी है, और सही रिवायत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बास कहते हैं कि 3 दफ़ा इस दुआ को अगर पढ़ा जाए तो इससे भी फ़ायदा होता है। फिर इसी तरह एक और दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और वो क्या है, हज़रत साबित बिन अनस के बारे में आता है कि उन्होंने इसको पेश किया। हज़रत अनस इसके रावी हैं, कि हज़रत अनस ने कहा कि मैं तुम्हें नबी सल्लम के तरीके पर दम झाड़ बताता हूँ। यानी कोई शख्स बीमार थे, जब हज़रत अनस के पास आए तो पूछा कि मैं क्या करूँ, तो कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर वही दुआ पढ़ूंगा जो अल्लाह के नबी पढ़ते थे। और फिर उन्होंने यूँ पढ़ा, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी, ए अल्लाह लोगों के रब, मुसहिबल बासी, तकलीफ़ को दूर करने वाले, इश्फी अंता शाफी, शिफा दे क्योंकि तू शिफा देने वाला है, ला शाफी इल्ला अंता, नहीं है कोई शिफा देने वाला मगर तू ही, शिफा ला युगादिरु सकमा, ऐसी शिफा जिसके बाद मर्ज़ का नाम निशान न रहे। तो ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है, इसके थोड़े से लफ्ज़ फ़र्क भी हैं। असे बिलबास रब्बन्नास वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाओ का शिफा ला युगादिरु सकमा। तो इस तरह की भी दुआएं जो होती हैं ये इंसान को बचा के रखती हैं ऐसी तमाम चीज़ों से जिसके साथ इंसान अपने ऊपर रखे। और ये कब होता है कि जब इंसान पे कोई असरात हो। और जादू में जैसे कि हमने बात पीछे की कि इसमें या तो इंसान को किसी से बहुत मोहब्बत हो जाती है या बिल्कुल नफरत हो जाती है। बाज़ दफ़े एक इंसान खुद अपने ऊपर भी तो अपने लिए भी तकलीफ़ का सामान बन जाता है। किसी ने मुझे कहा कि मेरा काम को दिल नहीं करता, मेरे पास काम भी पड़ा होता है, मैं सुस्त बैठी रहती हूँ, और फिर रोना आता है जब रात को सब काम नहीं हुए हुए तो देख देख के मुझे डिप्रेशन होता है, तो पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे रोकती है। फिर इसी तरह एक साथी है, तो वो बेचारी कई महीने से घर में बिस्तर पे है, कि उनको हर वक्त ये खौफ होता है कि बस मतलब मैं मर जाऊंगी या बीमार हो जाऊंगी, और बिल्कुल बेअमली पे शैतान लाता है। खैर, अल्लाह ताला ने उनको कुरान की क्लासों से जोड़ा। अब वो कहती है कि मैं पूरा वक्त जैसे घर में हूँ, बिस्तर पे तो थी तो लैपटॉप उनके पास होता था, कंप्यूटर क्लासेस में आई, अल्हम्दुलिल्लाह उनको उससे फ़ायदा हुआ। अब जो इतना वक्त चलाए काम मतलब रूम में हो, तो उसका फिर दिल चाहता है मैं भी कुछ करूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत वक्त होता है, मुझे थोड़ा सा मौका दें, चले मैं रूम में रीप्ले करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रीप्ले कर रही हैं, और अब वो कहती हैं कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। घर वाले इस पर बहुत खुश हैं कि एक बंदा मरीज़ हो और हर वक्त घर वालों के लिए एक बोझ का सामान हो, लेकिन अब वो कहती हैं बल्कि मैं इस चीज़ को इंजॉय करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल दिया। तो कोई भी वक्त ऐसा आ जाए तो इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से उसका अहल करे कि जिसके ज़रिए से गलत चीज़ है वो उसकी ठीक तरह से हो जाए। फिर इसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बास वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा ला युगादिरु सकमा। और फिर उसके बाद कहा कि अम सहिल बास रब्बन नासी बियदिक शिफा ला काशिफ लहू इल्ला अंता। थोड़े से फ़र्क है लफ्ज़, लेकिन सबका मफहूम यही है कि अल्लाह ताला आप शिफा दे सकते हैं और आप इस पे शिफा दे दीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और रिवायत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। रावी कहते हैं कि मुझ तक ये बात पहुँची कि आयतें बहुक्म इलाही जादू से शिफा का ज़रिया हैं। इन आयात को पानी से भरे बर्तन पर पढ़कर सहर ज़दा के सर पर उंडेला जाए। वो आयतें ये हैं, कुरान पाक की मुख्तलिफ जगह की आयात हैं। फलम मालकाऊ, आप लोगों ने एक मंजिल के नाम से भी किताबचा देखा होगा, उसकी जो आयतें ना उसके बारे में भी आता है कि ये आयात मुख्तलिफ हदीसों से मिलती हैं कि कोई ऐसा असर है आसेब का या जादू का तो उस पर फ़ायदा दे सकते हैं। ये तकरीबन उसी की आयतें, सूरह तौहा की आयत 69 है, सूरह यूनस आयत 81 से 82 है, सूरह आराफ की आयत 118 से 122 है। तो इस तरीके, और इन सब में आप देखेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जादूगरों का जो ज़रिया है वो इसमें मिलता है। फिर बाज़ दफ़ा एक और जादू की किस्म जो होती है वो ये कि शोहर अपनी बीवी के काबिल नहीं रहता, और ये तो मैं बिल्कुल एक बहुत ही करीब से भी किसी का मामला देखा गया था। एक बहुत ही मारूफ शख्स, मतलब एक जैसे अपने कह लें कि दीन के नाम से भी अच्छा नाम और सेहतमंद, ऊंचे लंबे, यानी जो भी एक ज़ाहरी तौर पे एक मर्द के अंदर खूबी हो सकती है, लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद वो अपनी बीवी के लिए यानी खुशी का सामान ना बन सके, 1 साल तक रहा। फिर उसके बाद जब कहानी खुली और वो अल्लाह ताला की रहमत से उन्होंने कहा कि ना मैंने किसी को बताना है, बीवी भी सब्र वाली थी, दोनों मियाँ बीवी ने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, और अपने आप को वो हाफ़िज़ कुरान भी थे खुद, तो उन्होंने कहते थे कि मुझे खुद साफ महसूस होता था कि मुझे कोई रोकता है, लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं, मैंने अपना इलाज खुद करना है। और फिर अल्लाह ताला ने जब चाहा तो वो उस शहर से आज़ाद हुए, किसी को कहे बगैर खुद ही कुरान पढ़ पढ़ के अपने आप को इस चीज़ के काबिल किया। फिर आप लोगों ने एक और इलाज सुना होगा, बेरी के पत्तों को लेके कूटना, ये भी एक मसनून अमल दिखता है। मैं पढ़ के ये भी सुना देती हूँ कि बेरी के 7 हरे पत्ते लेकर, यानी सब्ज़ रंग के जो गीले यानी फ्रेश लीव्स जो होते हैं, 7 2 पत्थरों के दरमियान पीस लें, फिर इसे पानी में मिला दें, इस पर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम करें, फिर इसमें से बीमार 3 घूंट पिए, बाकी पानी से गुसल कर ले, इस पर से जो भी असर है वो बिस्मिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और ये नुस्खा उस आदमी के लिए बेहतर है जिसे अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करने से रोक दिया गया हो, और जादू की अमूमन किस्में जो होती हैं उनका इसी से ताल्लुक़ होता है। इब्ने हजर ने फतुल बारी जो सही बुखारी की शरह है उसमें ये बात नकल की है। फिर एक और चीज़ भी ये है कि किसी के बारे में अगर शक होता है ना आपको कि उसकी नज़र लगी है, तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। एक मौके पे एक शख्स थे तो वो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिल्कुल ठीक था, एकदम मैं बीमार पड़ गया हूँ, बिस्तर पे पड़ गया हूँ। आपने कहा कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, यानी किसी ने तुम्हें देखा या तुम्हारे जिस्म की तारीफ़ की? कहने गए कि हाँ, फ़लाँ मौके पे मैं गुसल कर रहा था तो पास एक शख्स गुजरा, तो उसने मेरे जिस्म के बारे में कहा कि बड़ा अच्छा जिस्म है या खूबसूरत है। कहते उसके बाद बस मैं बिस्तर पे पड़ गया, मुझे होश नहीं रही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया, शख्स के बारे में ये शक था कि इसकी उसको नज़र लगी है, फिर उसको कहा कि तुम गुसल करो, उसने गुसल किया, उसका जो गुसल का बचा हुआ पानी था ना तो उस बीमार के जिस्म पे लगाया तो ठीक हो गया। तो ये चीज़ सही रिवायात से ये मिलती है कि नजरे बद का असर तोड़ने के लिए ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन वही बात है कि फिर इसमें आपको यकीन तो हो ना कि किसकी नज़र लगी है। अब माँ की तो अपनी भी लग जाती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वही है ना कि मुझे तो एक चीज़ बस आसान सी लगती है कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, तरीका आपने इख्तियार करना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे से इस तरह के मुश्किल काम नहीं होते, तो मुझे वैसी शिफा दे दे। आप देखेंगे कि जो इलाज मांगेंगे, अगर आप कहेंगे ना मैं दवाई खाऊं तो सेहतमंद हो, तो बाकी आपको दवा खानी पड़ेगी। आप कहते नहीं मैं दुआ करूं तो सेहतमंद हो जाऊं, अल्लाह ताला आपको दुआ से भी कर देंगे। फिर इसी तरह कुछ ऐसी भी चीज़ें जिन गज़ाओं के ज़रिए से भी इलाज किया जा सकता है, मसलन अजवा खजूर, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ख़ास किस्म की खजूर होती है जो काफ़ी महंगी भी आती है। हज़रत आयशा बताती हैं कि आपने अजवा आलिया के बारे में फरमाया कि सुबह नहार मुँह, अजवा का बग़ैर पानी के खाना हर जादू और जहर से शिफा है। बाज़ जगह आता है कि 3 खा ली जाएँ, ये 7 वाली रिवायत भी मौजूद है कि 7 अजवा खजूरें खाई तो उस दिन में उसको जादू का मतलब जहर का असर नहीं होगा। ये हमारे पास होनी चाहिए ना चीज़ें, बहुत काले रंग की छोटी छोटी होती हैं, थोड़ी अगर महंगी भी हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसका फ़ायदा देखें तो कितना अच्छा है। कम अज़ कम ज़्यादा ना खाएं तो एक ही खजूर खा लें, कुछ ना कुछ असर तो उसका रहेगा। फिर दूसरी चीज़ है वो कलवंजी है, ब्लैक सीड्स जो होते हैं, इसका तेल भी होता है। और इसके लिए एक वाक्य आपको सुना देती हूँ। खालिद भी कहते हैं कि हम सफ़र निकले, हमारे तो गालिब भी थे, वो रास्ते में बीमार पड़ गए, जब हम मदीना पहुँचे तो वो बीमार थे। इब्न तीक ने इनकी आदत की तो फरमाया तुम इन काले दानों यानी कलवंजी ज़रूर लो कि 5 या 7 दाने लेकर इनको पीस लो, यानी चंद दाने यानी कि चम्मच भर भर पिए, क्योंकि ये गर्म भी होती है ना, फिर का असर उलट पिसता है। कहा 5-7 दाने लेकर पीस लो, फिर इस तेल के साथ नाक के दोनों नथनों में टपकाओ, क्योंकि आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने अल्लाह के नबी को फरमाते सुना कि ये कलवंजी हर मर्ज की शिफा है सिवाय साम के। मैंने पूछा साम क्या है, तो फरमाया कि मौत, मौत के अलावा इसमें चीज का इलाज है। इसी तरह अगर आप देखिए हर दिन इसके छोटे से दाने आप खाएं, और मैंने किसी का भी देखा बहुत ही मुझे अच्छा भी लगा कि वो उठ के निहार नीम गर्म पानी का एक छोटा ग्लास और 1 चम्मच शहद के अंदर ऐसे चुटकी डाल के कलवंजी की, वो चम्मच उसकी खाई ऊपर से गर्म पानी पी लिया, शहद भी आ गया पानी भी आ गया, खाली पेट पीना फायदेमंद है और कलवंजी भी है। ये इंतजार ना करें कि खुदा ना खास्ता कोई असर हो तो फिर हम ये काम शुरू करें, पहले से ही आप तैयारी रखें। हमारी अगर आदत ऐसी हो जाएंगी सुन्नतों के करीब तो इंशाल्लाह तआला इससे भी फ़ायदा होगा, मौत के अलावा इसका इलाज है। फिर एक और तरीका इलाज होता है जिसके ज़रिए ऐसी चीज़ों से बचा जाता है, वो है सिंगी लगवाना। कभी आपने देखा होगा पहले दौर में इस तरह से एक तरीका होता था, एक तो जोंक होती है ना जो जिस्म का गंदा खून चूस लेती है, लीच जिसको बोलते हैं, लेकिन सिंगी क्या होती है कि कट्स लगवाते हैं जहाँ ब्लैक वेन्स होती हैं, हल्के से कट लगते हैं और उसमें से गंदा खून निकल जाता है। रिवायत है कि जिसने चांद की 17, 19 और 21 तारीखों को सिंगी लगवाई इसे हर बीमारी से शिफा हो जाएगी। और मुझे रिसेंटली कोई बता रहा था कि लोग अब दोबारा इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि वो अपने जिस्म में इस तरह से कट लगवा के जो फसद मादे होते हैं गंदे उनको निकलवा लेते हैं। आपने फरमाया कि जिन चीज़ों से तुम इलाज करते हो उनमें बेहतरीन इलाज सिंगी लगवाना है, यानी गंदा खून जिस्म से निकलवा देना। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो इमाम इब्ने कय्यम है वो कहते हैं कि जो खबीस रूहें होती हैं ना वो जल्दी ऐसे असरात को कबूल करती हैं। आप गानों से दूर रहें, अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को इन चीज़ों से रखें, वल्गर टॉकिंग, शायरी, गंदी चीज़ों को देखना, अब देखें हर चीज़ से इसका असर जाता है। अब ये तो चंद वो चीज़ें हैं ना जो हमारे पास हैं। फिर इसके साथ आप देखें सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, उसमें अल्लाह के नबी ने खुद ही सिखा दिया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रुमा इस्मिही शयूं फिल अर्दी वला फिस्समाई वहुव समीउल अलीम, 3 दफ़ा पढ़ें कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, 3 दफ़ा पढ़ें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, आखिरी 2 सूरतें हैं, 3 सूरतें बल्कि हर नमाज के बाद, और ख़ास तौर पर फजर और मग़रिब के बाद आप पढ़ सकते हैं 3-3 बार। फिर रात को जब सोने के लिए आप लेटते थे तो मुवज़्ज़तैन पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंकते और फिर वो हाथ अपने जिस्म पे फेरते जहाँ तक आपका हाथ जाता। हज़रत आयशा कहती है कि जब आप बीमार हो गए तो फिर मैं आपके लिए ये काम करती थी, तो इस तरीके से ये करना। अब ये तो वो अच्छी चीज़ है ना, लेकिन इसके बरक्स अफसोस की बात यह है कि हमारे कल्चर में इस मौजू को लोगों की वीकनेस समझते हुए या इसको एक कमज़ोरी समझ के बहुत ही गैर शरई तरीक़ों के साथ इलाज किया जाता है। मसलन आप देखिए कि इसमें जादू टूने किस तरीके से लोग करते हैं, तावीज़ देते हैं, गंडे होते हैं, बाल धागे बांधे जाते हैं, किसी को आपने काले रंग के धागे बाजू में पहने देखे होंगे, किसी के यहाँ पे इमाम जामिन के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इन सब की कोई भी असल नहीं है। आप कहते नहीं लोगों को फ़ायदा हो जाता है तो क्या हर्ज है, तो बात यह कि फिर दीन तो वो दीन ना रहा जिस दीन की आप दावत देते हैं। बाज़ लोग कड़ा पहनते हैं जी, ये फलां बुज़ुर्ग से लिया हुआ है। बाज़ लोग जो हैं वो जानवरों के जो खुर होते हैं उनके ऊपर कुछ पढ़ पढ़ा के वो चीज़ों को पेश करते हैं। इन सब चीज़ों से बचें, और ख़ास तौर पे जो लोग ऐसे काम करते हैं आमिल के नाम पे, लोग उनको आमिल नजूमी कहते हैं। फिर आपने कभी ऐसे एड्स भी देखे होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ की भी अखबारों में आते हैं कि नहीं, अमेरिका तक तो पहुँच गए, पूरे पूरे सफ़े के ऐड होते हैं आमिल नजूमी, महबूब आपके कदमों में, और पता नहीं क्या क्या। समझ नहीं आती कि लोगों को कदमों में क्यों डालते हैं, जहन में कदम पे डालने से क्या आता है, सोचिए ज़रा। कोई इंसान तो नहीं आता मेरे जहन में। हाँ, बहरहाल ये कि इन सारी चीज़ों से बचें, इतने महंगे इश्तहार और इतना कुछ करना। फिर इसमें एक और जो तरीका होता है, पानी पर दम करना, जहाँ भी ये चीज़ देखे उसको तो आप कभी भी प्रमोट ना करें, क्योंकि ये तो वैसे ही शरण भी जायज़ नहीं। और आप देखें कि जिसको आप कह सकते हैं कि मेडिकली भी ये दुरुस्त नहीं है, पानी पे जब आप, ये पानी का ग्लास है तो इसमें जब फूंक मारेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई चाय पी रहा है या कोई गर्म चीज़ है तो उसमें फूंके ना, दूध के ऊपर फूंक मार के आप उसकी बलाई हटाए नहीं कर सकते, तो वो आम नहीं कर सकते। तो फिर जो लोग पढ़ते हैं वो फूंकते हैं, और आप सोचिए फूंक के साथ उनके मुंह के कुछ ना कुछ तो अगर बुखारात भी चले जाएँ तो दिल मंद है, ये दुरुस्त तरीका नहीं। बास लोगों को देखा है कि कागज़ पे कुछ लिखते हैं, लिटरली मैंने देखी ये चीज़ लोगों के घरों में, कागज़ पे लिखते हैं इंक के साथ, ये इंक जो है, और वो कागज़ की बत्ती सी बना के पानी की बोतल में डाले और उस पानी को भर दिया और कहा जी ये जब ख़त्म होने लगे इसमें भरें। चलें आप ज़रा सोचें ये क्या है, इंक क्या होती है, एसिड है। ये सोच के दिल नहीं मानता कि आप एक इतनी यानी जहरीली चीज़ अपने जिस्म में ले रहे हैं, वो चूँकि अब घुल के पानी में इतनी थोड़ी होती है कि शायद उसका ज़ाहरी असर ना, लेकिन जिस्म के अंदर जाके सोचे वो क्या कुछ करती होगी। इन सब चीज़ों से महफूज रहें, बस चीनी दम कर देते हैं, बस कुछ इस तरह की चीज़ें। तो बस यही समझ लें कि जितना जो जिसका यकीन होगा अल्लाह सो उसी से फ़ायदा देगा, लेकिन इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। बाज़ लोग फिर इस तरह, जैसे आपने वो एक दो चीज़ें सुन, हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं, बस वो लिटरली कोई रीज़न होती है। बाज़ लड़कियां जब यंग हो जाती है, एक ख़ास एज तक अगर अपने घर में नहीं भी गईं तो उनके ऊपर कुछ ऐसी कैफियत आती हैं कि जिसको वो बाद में समझते हैं कि जिस पे किसी ने जादू कर दिया है, उसका इलाज कुछ और होता है, लेकिन उसको ऐसे मौलवियों के पास और ऐसे आमिलों के पास ले जाना कि बाज़ दफ़ा वहाँ से इतनी गंदगी और इतनी फहाशी भी फैलती है कि जो लोग इस तरह के इलाज करवाते हैं और लोग तो उन पर कंधा एतमाद कर रहे होते हैं, लेकिन उससे फिर इंसान के दीन की भी बात जाती है। आपने फरमाया कि जो भी यानी जादू करे या कराए तो गोया के यानी ऐसे ही है कि वो जैसे इस्लाम से निकल जाता है।
तिलावत सुनेंगे।
कोई सवाल अगर आपके जहन में इस मौजू पे है जो आप अपने फायदे के लिए पूछना चाहें तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं।
قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ۖ كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون